भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 विश्वरूप की सृष्टि, श्लोक संख्या 31। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम्।
बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम्।
क्षत्रियस्तदनुव्रतः।
क्षत्रियस्तदनुव्रतः।
योजातस्त्रायते वर्णान्।
योगातस्यत्रचेद्वर्णान्।
पौरुषः कण्टकक्षतात्।
पौरुषः कण्टकक्षतात्।
बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम्।
बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम्।
क्षत्रियस्तदनुव्रतः।
क्षत्रियस्तदनुव्रतः।
योजातस्त्रायते वर्णान्।
योजातस्त्रायते।
पौरुषः कण्टकक्षतात्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोरुचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोरुचक्कों जैसे उपद्रवी तत्वों से समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुव्रतः शब्द सार्थक है। जो व्यक्ति चोरुचक्कों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जन्म तो बाह्य धारण है, यह वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं है। भगवद्गीता में 18:41-44 ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है और यह समझा जाता है कि किसी विशेष समूह से संबंधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति, पराशक्ति या परा प्रकृति अर्थात पुरुष की पराशक्ति हैं। पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष मानते हैं, यद्यपि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं होते। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन की शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वे प्रजाओं को अथवा थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतएव संरक्षण मनुष्य तथा पुरुष तथा पशु दोनों ही के निमित्त है। आधुनिक समाज में प्रजा को चोरुचक्कों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें क्षत्रिय नहीं है, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है और पहले की तरह वह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पौत्र महाराज परीक्षित विशेष प्रकार के क्षत्रिय राजा थे क्योंकि उन्होंने सभी मनुष्यों तथा पशुओं को संरक्षण प्रदान किया। जब साक्षात कली ने एक गाय का वध करना चाहा तो महाराज परीक्षित तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए सन्नद्ध हो गए और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राज्य को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है क्योंकि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक निर्वाचित राज्याध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतः मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण हैं।
हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे तरफ से श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप से सब भक्तों को अभिनंदन और आशीर्वाद। कल की रथ यात्रा अपूर्व सफलता से बनाने के लिए और श्रील प्रभुपाद ऐसे सुसमाचार मिल के जैसे इतने सारे पुस्तकें का वितरण हुआ, प्रभुपाद का उत्तरता डबल इट, उसको द्विगुण करो। तो अगले साल में कम से कम डबल होने चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक में जैसे ये तात्पर्य में जैसे श्रील प्रभुपाद के बहुत तात्पर्यों में आज का समाज में क्या स्थिति है उसका विश्लेषण है। तो संक्षेप में क्या बोलना है, सभ्यता का नाम है असभ्यता हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद के पुस्तक का पाठ करने के बिना तो किसी आम आदमी थोड़ी बुद्धि लगा के समझ सकते है कि आज की परिस्थिति समाज में बहुत खराब है। और श्रील प्रभुपाद कुछ निर्देश भी देते हैं जिससे समाज में और सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो कैसे हम ऐसी परिस्थिति में गिरा, हम श्रीमद् भागवत से श्रील प्रभुपाद की कृपा से पता मिलता है कि ये भारत में 500 वर्षों के पहले राजा परीक्षित उपस्थित थे और इनकी राजता में एक खाली एक गाय को एक दुष्ट व्यक्ति परेशान दिया और जवाब में परीक्षित महाराज तैयार थे वो दुष्ट व्यक्ति जो काली राजा था वो दुष्ट व्यक्ति का पूरा वध करना। और आजकल यही भारत में एक ही भारत में प्रतिदिन कितने सारे हजार हजारों गायों की पूरी हत्या होती है, केवल मारना नहीं है हत्या होती है। और ऐसा लगता है कि सरकार असहाय है क्योंकि ये वर्तमान सरकार का प्रचार है गौ हत्या बंद करना और अभी सत्ता है उनके पास, परंतु गौ हत्या जैसे पहले चलते रहते। और कुछ राष्ट्र में गौ हत्या निषेध है और वो राष्ट्रों में भी होती है जैसे गुजरात में। तो सामान्य लोग नहीं जानते कैसे गुजरात में भी बहुत गौ हत्या होती है। गायों को पाकिस्तान भेजना है गुजरात में से और गुजरात से महाराष्ट्र देना है और गुजरात के अंदर में भी विशेषकर जिस जगह में ऐसे जगह में जिसमें बहुत अन्य जाति के लोग है जैसे समाचार पत्र का की भाषा, ऐसे नहीं बोलते कौन सा जाति, लेकिन सब समझ जाते अन्य जाति के लोग जिसमें उनका जनसंख्या अधिक होते है, तो ऐसे जगह में बहुत बहुत होते हैं। और पहले मुख्य जाति के लोग से चोरी करते गए और उसके बाद हत्या होती है। विशेषकर कुछ महोत्सव होते हैं वो जाति के, और उसी समय बहुत होते हैं। और क्या हो रहा है, लगता है सरकार क्या असहाय है, सत्ता है क्या? अगर सत्ता है और बोलते है कि गौ हत्या बंद करना हमारा एक मुख्य प्रस्ताव है, तो बंद नहीं करते क्यों? उसका अर्थ है कि वास्तव में सत्ता उनके हाथ में नहीं है, नहीं तो वास्तव में गौ हत्या बंद करना नहीं चाहते। तो कैसे ऐसे स्थिति में हम गिर गए? एक ही भारत जो परीक्षित महाराज का समय ऐसा कलयुग था, लेकिन परीक्षित महाराज का संरक्षण से, ये श्लोक का विशेष विषय है कैसे क्षत्रियो संरक्षण करते। तो सोना का युग जैसे था जब तक परीक्षित महाराज उपस्थित थे, तो यही श्लोक से हम इस विषय के बारे में कुछ पता मिलते कि इस यही श्लोक के पहले कि ब्राह्मणों पुरुष का मुख से निश्रित हुए वो पता हमें मिला, और यही श्लोक में कि क्षत्रियों पुरुष के बाहों से निश्रित हुए। तो पुरुष यही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुष शब्द इस प्रसंग में पुरुष शब्द का अर्थ है परम पुरुष। ब्राह्मण ब्राह्मणों की कर्तव्य उनका धर्म है, वो परम पुरुष की सेवा करना और दूसरों को परम पुरुष के बारे में ज्ञान प्रदान करना। परंतु कलयुग में अधिकांश तथाकथित ब्राह्मणों वो परम पुरुष इनकी परम पुरुषत्व अस्वीकार करते हैं। ये मुख्य समस्या है और सभी समस्याओं का मूल है। पूरा समाज पूरी सृष्टि का मूल है भगवान कृष्ण। यथातुरो मूल निषेचेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणं तथैव सर्वाहाणं अत्युतेज। भगवान पूरी सृष्टि के मूल है और इनकी सेवा करने से, जैसे वृक्ष का मूल पर जल देना है और वो मूल पर जल देने से वो वृक्ष के सब शाखाओं पत्तों फूलों फलों पुष्ट होते। और यदि हम अन्य प्रकार से अन्य रीति से प्रयास करते हैं वो मूल को जल नहीं देना और सीधे फल फल पत्ता शाखाओं इत्यादि को जल देना, तो वो क्या है? वो मूर्खता है। वो फल फल इत्यादि तो पुष्ट नहीं होगा। और इसी प्रकार उपेत को भोजन देना है और वो भोजन जो पेट को देना then they say to pura sharia, sab sharia ke angon ko push karte hai, yadi hum seedhe wo sab sharia ke angon bhojan dena chahte hai to usse fayda nahi hoga, wo murkta hai, jaise wo mujhe kaan mein kuch dard hai ya shravan ki shakti kam ho gaya, to kya kare to usme chawal dena. Ye murkta hai ne. To isi prakar yadi hum swikar nahi karte ki param purush Krishna hai aur inka santushti vidhan wohi vidhan hai jisse yasmin tushta jagat tushta, jisse sab log tusht honge, sab pura jagat tusht ho jayega yadi ye vaidik vachon jo brahmanon ka kartavya hai wo prachar karne, yadi hum aswikar karte hai to pura samaj ki paristhiti ulta ho jayegi. Aur aaj kal hum waise dekhte hain ki aaj kal sarkar Srila Prabhupada ye tatparya mein likhte hain ki ye vaishon aur shudron ka, aur likhte hain ki koi yogya kshatriya nahi hai. Mera anuman hai ki Bharat mein aur Bharat ke bahar bhi log hai abhi tak jo yogya kshatriya ho sakte hai, jaise kal wo rath yatra mein wo police wale jo संरक्षण की तो अच्छी तरह की और प्रकटता की ऐसे करने से वे स्वयं संतुष्ट होते, उनका उनका स्वभाव वैसे है संरक्षण करना, और भगवान को और भगवान के भक्तों को ब्राह्मणों को सम्मान देना उनका स्वभाव वैसे है. और आज तक भारत के फौज में ऐसे बहुत वीरशाली लोग हैं, नहीं पुरुषों, आजकल तो नारियों भी फौज में गृहित होते हैं जो विचित्र है. लेकिन आज तक ऐसे हैं नहीं बहुत वीरशाली शौर्यशाली क्षत्रिय जैसे लोग है, परंतु वास्तविक नेतृत्व नहीं मिलके तो अच्छी तरह संरक्षण नहीं कर सकते. यदि इच्छा थी तो बहुत कम समय में ये पूरा भारत तो पूरा शांत हो सकता, और वो सब अपराध जो होते हैं भारत में आजकल पिछले 2-3 साल से बहुत आपत्ति होती है रेप के बारे में, तो सरकार क्या असहाय या असमर्थ है ये सब बंद करना, और पुलिस वाले बंद नहीं कर सकते. मेरा अनुमान है कि यदि पुलिसों को वास्तविक सत्ता देना था तो कम समय में सब कुछ साफ कर सकते, वे जानते हैं ये सब डाकू कौन कौन है और कहाँ कहाँ रहते हैं. जिससे कितने दिन के, 1 साल के पहले एक नया प्रेसिडेंट था फिलीपींस में, और युद्ध किया सब दुष्ट लोग को, जो कैसे युद्ध किया कैसे कोई अरेस्ट गिरफ्तार नहीं किया किसी को, नहीं तो सब पुलिस और आर्मी वाले को बताया तो बंदूक लेके सब मारा दो, कुछ प्रश्न पूछने, तुम लोग जानते हो कौन कौन है, विशेषकर जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं, और ऐसे है तो समस्या समाधित हो गया। ऐसे पंजाब में भी था ना, वो कितने 20-25 साल के पहले, वो क्या है, वो अकाली वो क्या था, वो था अकाली, नहीं नहीं वो अकाली दल आज तक वो खालिस्तान के लिए वो सब अभियान था। फिर वो क्या नाम था, गिल, पी एस गिल को पूरा साथा दिया, इनको बताया वो कौन था, वो प्रधानमंत्री ये समय राजीव इंदिरा, तो कुछ प्रश्न मत पूछो, मैं 6 महीने में सब कुछ साफ कर दूंगा। ओ ऐसे किया, किसी को गिरफ्तार नहीं तो खत्म कर दिया। तो परीक्षित महाराज वैसे तैयार थे, नहीं वो काली राजा का पूरा खत्म करना, तो काली राजा को उस पहले उसको अरेस्ट करना, फिर वो जेल से वो जो बंदी जो है तो व्यवस्था करते जिससे वो पुलिस वाले को घूस खिलाना और जज वाले को घूस का, ऐसा नहीं था, सिर कटना बस फिनिश्ड। तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, वो डेमोक्रेसी हो रहा है, प्रजातंत्र ऐसे बोलते हैं, लेकिन प्रजा सब मूर्ख है, और वैश्य और शूद्र तो बड़े बड़े नेता है, और जब वैश्य और शूद्र समाज के नेतृत्व लेते हैं तो उनका आदेश उद्देश्य क्या होगा, वैश्यों पैसा और शूद्रों इंद्रिय सुख, और ब्राह्मणों यदि समाज के नेतृत्व लेते हैं तो कैसे नेतृत्व करेंगे, वानाश्रमाचरवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यतत्तोष कारणम। ब्राह्मणों तो स्वयं सता नहीं लेते, क्षत्रियों को उपदेश देते जिससे वर्णाश्रम के विभाजन के अनुसार समाज गठित होने चाहिए, और वो वर्णाश्रम धर्म पालन करने का चरम उद्देश्य है विष्णु आराधना। और क्षत्रियों यदि ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के बिना क्षत्रियों सत्ता लेते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है, सत्ता। और वैसे भारत का इतिहास है, तो पहले ब्राह्मण जाति तो पतित हो गया, पहले श्रृंगी श्रमिक ऋषि के पुत्र वो श्रृंगी परीक्षित महाराज को श्राप दिया, तो वो पहला कदम था भारत का ब्राह्मण समाज का पतन का। और उसके पश्चात बहुत कहते हुए ब्राह्मण तो भगवान विष्णु की सर्वश्रेष्ठता परम पुरुषत्व अस्वीकार किया, कैसे, मायावाद दर्शन ग्रहण करने से, प्रचार करने से, मायावादम सच्छस्त्रम प्रचन्न बोध मुच्यते, वो मायावाद जो नाम से वेद शास्त्र को मानते परंतु वास्तव में वो परोक्ष रूप से बौद्ध धर्म है जिसमें किसी भगवान को नहीं मानना है। और इस प्रकार ब्राह्मण जाति पतित हो गया, फिर वो क्षत्रियों यथा यथोचित मार्गदर्शन नहीं मिलके तो आपस में लड़ाई किया और ऐसे ही अच्छी तरह देश का संरक्षण नहीं कर पाए और इसका फल था कि बाहर से पूरा अधार्मिक सेनों आए हैं और उसका फल था कितने लगभग 1000 सालों, कितना 1000 साल तो भारत के ऊपर बीफ खाने वाले, गौ हत्या करने वाले लोग सत्ता लिया। उसके बाद दूसरे श्रेणी गौ हत्या करने वाले ब्रिटिश आए थे और उसके बाद स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ब्राह्मण था ना, पंडित, तो जिससे आशा थी कि फिर भारत में राम राज्य पूरा स्थापित हो गया, लेकिन वो पंडित तो वो स्वयं गौ मांस खाने वाले था और व्यभिचारी किया, वो सब जानते हैं। और क्या क्या धारणा था भारत का उद्धार करना, कितने द्वादश सहस्र परदेशी लोग के नेतृत्व से मुक्त हो गया तो आशा था कि राम राजा वापस आएगा, परंतु वो कहते हुए ब्राह्मण का प्रचार था कि भारत का पतन धर्म था, वो भारत का वास्तविक वैभव है धर्म जो पूरी तरह नष्ट नहीं हुए इतने सारे साल, विद्वेषी लोग कि सत्ता का युग में तो धर्म तो पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, परंतु यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे तो जितना पतन हो गया था वो कितना 1200 वर्षों में, तो उसके पश्चात कितने साल हो गया, 7, 5, 7 नहीं नहीं कितने साल हो गया, 61 साल हो गया, तो पतन ज्यादा हो गया ना, एक शताब्दी के कम का समय में धर्म का पतन ज्यादा हो गया वो पूरा 1200 वर्षों से। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही मंतव्य किया कि जो ब्रिटिश नहीं किया भाई से और स्लॉटर हाउस कटाल खाना बनाना और मुस्लिम तो पहले नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम धर्म में भी ऐसा विधि है, यदि अच्छी तरह पालित होते कि प्रतिदिन पशु हत्या नहीं होते तो यथा समय किसी विशेष महोत्सव पर पशुओं की हत्या होती है और ब्रिटिश जानते थे कि हम यहाँ कम लोग हैं और भारतीय का संख्या बहुत ज़्यादा है और विशेष पूरा नाराज होते यदि हम गौ हत्या करते, तो इसलिए वे नहीं किया और प्रयास नहीं किया और भारत में ही गौ हत्या स्थापन करना या ज्यादा करना, परंतु जब भारतीय लोग स्वयं इसकी भूमिका की तो भारतीय लोग उसको ग्रहण किया। और वो कहते हुए पंडित का क्या प्रचार था कि धर्म, वैदिक धर्म भारत का पतन का मूल कारण है, तो इसलिए भारत के भावी मंदिर क्या होगा, क्या होंगे, फैक्ट्री, श्रम मंदिर। हम मंदिर जाते हैं जिससे हम श्रम से कुछ शांति मिलेगी। और एक पंडित का प्रचार था कि फैक्ट्री बनाना चाहिए, और वास्तव में वर्तमान सरकार का एक ही प्रचार है, नहीं विकास विकास विकास। उसका मतलब क्या है, फैक्ट्री बनाना, रोड बनाना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना। धर्म का नाम से प्रचार करते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या करते हैं, वो जो पहला प्रधानमंत्री चाहता था। तो यही स्थिति है भारत में। तो हम यहाँ श्रीमद् भागवत की अमृत वाणी सुनने के लिए आए हैं और राजनीति की चर्चा हो रही है, क्योंकि सब कुछ श्रीमद् भागवत में है। यही तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद विश्लेषण करते हैं। तो कैसे समाज विभाजित होने चाहिए और क्षत्रियों के क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण से शासन करना चाहिए, तो ये सब है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में सर्वोच्च प्रचार है प्रेमा पुमार्थो महान, भक्ति के बारे में। यही श्रीमद् भागवत का विशेष प्रदान है, विशुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति, जो अन्य शास्त्रों में सुस्पष्ट रूप से नहीं मिलते। धर्म कैतव प्रोजित अत्र, भक्ति परेशानुभाव विरक्ति रण्यत्र, यही सब विचार है श्रीमद् भागवत में। परंतु गीता में भी जैसे सामाजिक विचार भी है, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि समाज ऐसे चलेगा, ब्राह्मण और क्षत्रियों की सहयोगिता से, और चार विभाजन होने चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। तो आजकल बहुत स्वामी है, धर्म प्रचारक है, जो बोलते हैं कि वो पद्धति वर्णाश्रम वो अच्छी थी, वो समय के लिए वो ठीक था, लेकिन आजकल के लिए वो अनुचित है। केवल श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के बिना और कौन बोलते है कि आजकल भी वर्णाश्रम धर्म स्थापित होने चाहिए, कोई दूसरे नहीं बोलते। सब सोचते है कि देश का विकास और हिंदुत्व का विकास एक साथ होने चाहिए, तो ये विचार में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हिंदुत्व या हिंदू शब्द तो किसी शास्त्र में नहीं आता। श्रील प्रभुपाद कही बोले कि वास्तविक वैदिक समाज वर्णाश्रम है, तो वो स्थिति में सब लोग तो शांति में रह सकते जितने भी संभव हो ये अशांत जगत में, और शांत स्थिति में शांत स्थिति तो अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए. तो वर्णाश्रम स्थापन करने तो परम धर्म नहीं है, सामाजिक धर्म है, परंतु वो अनुकूल है कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने के लिए. तो हम सब पतित जीव है, इसलिए हम भौतिक संसार में हैं. और श्रीमद् भागवत और भागवत गीता का उपदेश लेके हम ये घर स्थिति से मुक्त हो सकते. तो श्रीमद् भागवत में ये सामाजिक उपदेश भी है, जिससे हम जो माया प्रकृति के तीन गुणों से बद्ध है, हम उस तीन गुणों का बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और उसी स्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, या भगवान की भक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं. मांग छो व्याचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतन ब्रह्म भूयाय कल्पते. परंतु अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात अहैतु की अप्रतिहत भक्ति करने के लिए सामान्यतः तो सब भक्त पहले साधक होना चाहिए, साधना भक्ति पालन करना चाहिए. तो कैसे वर्णाश्रम अनुकूल है भक्ति करने के लिए, तो एक उदाहरण देता हूँ. तो साधना भक्ति में प्रथम क्या करना है, आदो गुर्वाश्रया उसे है, और दूसरा दृष्टिकोण से सर्वप्रथम हर एक दिन उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके पहले वो प्रथम कार्य दिन में दिनाचार्य में पहले जल्दी उठना है. तो वर्णाश्रम समाज में तो सब लोग जल्दी उठे, जैसे 40 साल के पहले मुझे याद है मैं भारत में था 40 साल के पहले, तो कोई नहीं था जो सूर्योदय के पहले नहीं उठे थे, या सूर्योदय के साथ ऐसा था. और अभी तक गांव गांव में होते हैं, लेकिन टीवी का प्रभाव से वो भी लुप्त हो जाते हैं. तो वर्णाश्रम धर्म में सबका जल्दी उठना है, और भक्ति में भी. और आजकल लोग तो क्या 7 बजे 8 बजे जितने भी देरी संभव हो उसी समय उठे. आज रविवार है, 10 बजे तक 11 बजे तक 12 बजे तक ऐसा है ना, ऐसा है ना आराम. और कल रथ यात्रा बहुत बड़ी थी, 4 साढ़े 4 घंटे की यात्रा थी, और आप सब बहुत उत्साह से नाचते थे, तो फिर भी 4 बजे में उठ गया, और जो नहीं उठे उनको नहीं देखता हूँ. कुछ नहीं उठे लेकिन लगभग सभी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं. तो इस प्रकार आजकल पूरा वातावरण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है. यदि हम 4 बजे या उसके पहले उठना चाहते हैं, लोग तो आपत्ति करेंगे. और यदि हम बच्चे को उठाएंगे, ओ क्या हिंसा करते हो बच्चे को. यदि बच्चे को तपस्या देना है जो उसका भावी जीवन के लिए अनुकूल होगा, विशेषकर कृष्ण भक्ति में, ओहो ऐसे कहते चाइल्ड अब्यूज, ऐसे बोलते 4 बजे उठाना, ठंडा पानी में स्नान करवाना, ऐसे करते हो क्यों? जिससे चरित्र चरित्र शुद्ध होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको टीवी देखाओ जिससे काम क्रोध लोभ दूसरों को गाली देना, आजकल क्षत्रियों का आ गया है। आजकल ये पॉलिटिशियन विशेष निपुण है परस्पर गाली देने में, नहीं उसके अलावा और क्या करते हैं? एक पार्टी के नेता दूसरा पार्टी के नेता गाली देते हैं, उससे वो उनका काम है। तो सच्चरित्र बनाने के लिए तपाश्चर्य होना चाहिए, लेकिन आजकल स्थिति अलग है। और बच्चे के माता पिता जो गुरुकुल भेजते तो फिर भी जब 2 हफ्ते छुट्टी का समय बच्चे मिलते तो बच्चे को चॉकलेट खिलाने चाहते, वो सब तपस्या जो सीख गए तो पूरा टूट जाते। तो यही स्थिति है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यसे तमसावृता, तमोगुण का प्रभाव से लोग जो धर्म है उसको अधर्म मानते और अधर्म को धर्म मानते। बहुत कठिन है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। हमारे इसको में भी हम देखते हैं कि यदि हम सामान्य भक्ति नियम भक्तों को बोलते हैं वे आपत्ति करते हैं, तो कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं करना है, और बाहर का रेस्टोरेंट जाना और चॉकलेट कैडबरीज चॉकलेट खाना वो सब बंद करना चाहिए, वो भक्ति के लिए प्रतिकूल। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या नुकसान है, तुम सब फनाटिक हो, ऐसे बोलते कठिन स्थिति है। इसलिए श्रीमद् भागवत और सभी शास्त्र का निर्देश के अनुसार ये कृष्ण भक्ति आंदोलन जो अच्छी तरह श्रील प्रभुपाद के उपदेशों मानते, ये कृष्ण भावनामृत संघ का एक मुख्य उद्देश्य है वर्णाश्रम धर्म पुनर्स्थापित करना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार ब्राह्मणों और क्षत्रियों विशेषकर ये 2 उच्च जाति के धर्म के बारे में मंतव्य करते हैं। तो कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय होने चाहिए? गुण और कर्म के अनुसार, केवल जन्म के अनुसार नहीं है। आज तक हम देखते हैं जन्म के अनुसार ऐसे है, बहुत है जो क्षत्रिय जैसे है, कम से कम सिख जात, बस वे जात तो क्षत्रिय नहीं है लेकिन उनका स्वभाव वैसे है, और गोरखा नेपाल में और गुजरात में जडेजा ऐसे है, लेकिन अच्छी तरह मार्गदर्शन नहीं मिलके तो वास्तविक क्षत्रिय धर्म पालन नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी आशा थी कि कृष्ण भक्ति प्रचार करने से एक नया श्रेणी के ब्राह्मणों होंगे जो पूरे समाज को यथारूप शास्त्र मार्गदर्शन देने के लिए समर्थ है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण होने चाहिए, इंद्रिय सुख भोग आकांक्षी तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो शास्त्र ज्ञानी होने चाहिए और कृष्ण सेवोन्मुखी होने चाहिए, और भोग विलासी तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो ऐसे ब्राह्मण होना चाहिए. फिर सही क्षत्रिय योग्य क्षत्रियो बहुत प्रसन्न होंगे ऐसे ब्राह्मणों से मार्गदर्शन लाना. हरे कृष्ण.